اللہ رب العزت کی والذین آمنوا وشکل حب اللہ تعالیٰ کے جو عاشقین ہیں ایمان والے جو ہیں، فرمایا اشد محبت کے معنی کیا ہے؟ فرمایا اشد محبت کے معنی یہ ہے کہ بات تو اس مضمون کو سمجھے کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے شہر کانپور کے اندر ایک عالم نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہاں کے تاجروں نے مجھ کو وکیل بنایا اور ایک سوال پوچھا ہے آپ کے، آپ سے ایک سوال پوچھے کہ علماء اور اللہ والے اپنی تقریروں میں یہ بات ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کی محبت اور کاروبار کی محبت، اگر ہم ان محبتوں کو چھوڑ دیں تو مسئلہ کیسے ہوگا؟ جیسے ایک آدمی تجارت سے محبت نہیں دے گی، فیکٹری ہے اس کی یا دکان ہے اس کی، اگر وہ وقت نہیں دے گا تو ملازمین کھا جائیں گے، یہ تو تجربے کی بات ہے۔ تو کہا حضرت اب ہم کیسے کریں اللہ تعالیٰ کی محبت اگر اس کی محبت بھی؟ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت کی نفی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو عاشقوں کے لیے فرمایا کہ انہ لحب الخیر لشدید، کہ یہ ہمارے جو عاشق ہیں یہ دنیا سے تو شدید محبت کرتے ہیں، اس کی یہ بطور مداح کیا ہے، برائی کے طور پہ پیش نہیں کیا کہ بری چیز ہے، نہیں، یہ مداح تعریف کے طور پہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کو شدید فرمایا تو اپنی محبت کو اشد فرمایا۔ اب شدید اور اشد کا فرق کیا ہے اس کو سمجھیے۔ الیکشن کا زمانہ ہے، ہمارے دو دوست، ایک آدمی ہے اس کے دو دوست الیکشن میں کھڑے ہوئے، تو تھوڑا اور ادھر ہو جائیے نا، آئیے آئیے، اور ایک آدمی کے دو دوست الیکشن میں کھڑے ہوئے، اب دونوں جو امیدوار ہیں وہ اپنے دوست کے پاس گئے، ایک نے کہا مجھے ووٹ دینا، دوسرے نے کہا یار مجھے ووٹ دینا، تو اب آپ بتائیے ووٹ تو ایک ہی کو دے گا نا، ووٹ کوئی، ہاں آج کل کا زمانہ ہو تو دو کیا دس کو بھی ووٹ دے سکتا ہے، آج کل کے حالات تو مختلف ہیں، لیکن جو عقلی بات ہے اس کی بات پیش کی جا رہی ہے، ووٹ کو ایک کو دے گا، اب ووٹ کس کو دے گا؟ اب ووٹ اس کو دے گا کہ جس کی محبت غالب ہوگی ووٹ اس کو دے گا۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح جمع کی جاتی ہے کہ جب جہاں جس موقع پر دنیا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا موازنہ و مقابلہ ہو، وہاں دنیا کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دی جائے، یہ مراد ہے۔ جیسے اب ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ لی، اب تجارت کا وقت ہے، وہ دکان پر چلا گیا، ظہر تک تجارت کر رہا ہے، تجارت کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، جب اپنا نقصان نظر آتا ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی عیب ہے چیز کے اندر اس عیب کو ظاہر کرو بتاؤ، وہ کیا کرتا ہے، عیب بھی بتاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، اذان ہوتی ہے، دکان بند کی، مسجد میں چلا گیا، پھر نماز پڑھ کر آیا، پھر دکان میں آ کر بیٹھ گیا، تو شریف اس طرح سے وہ ہر نماز میں دکان بند کرے، پھر چلا جائے، پھر کھولے، پھر بند کرے، تو یہ منع نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے پتا یہ چلا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت ہے، وہاں پر دنیا کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنا، یہی اشد محبت ہے میرے دوست۔ جیسے خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ فرماتی کہ کنا نحدثہ ونحن یحدثنا، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے بات کرتے تھے، ہم ان سے باتیں کرتے تھے، یہ محبت کی وجہ سے۔ لیکن اذا سنیا الاذان، جس وقت کان میں اذان کی آواز آتی، تو کانا وہ ایسے ہو جاتے کہ لم یعرفنا، کہ وہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اذان کی آواز آتے ہی ویسے بے خبر، کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے، نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے، کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ کیا عالم ہے کہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، محبت کے تقاضے کیے جا رہے ہیں، لیکن جیسے اذان کی آواز آئی، اب یہاں تقاضا کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، تو فوراً ایسے ہوئے گویا پہچانتے نہیں ہے۔ تو بس فرمایا کہ یہی بات ہے کہ دنیا کی محبت 50 ڈگری ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت بس 51 ڈگری ہو۔ جیسے انسان ہے، اب اس کا مزاج ہے حسن کو دیکھنے کا، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنی نظر دیکھنی کر لی، اب سڑک پر گیا کوئی عورت نظر آئی، اب یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا تقاضا ہے کہ کتنی خوبصورت و حسین ہو، کیسی اس کا حسن مفت میں مل رہا ہو، لیکن وہ نظر نیچی کر لے اور اس کو نہ دیکھے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ سمجھ میں آگے نا؟ تو کس طرح سے دنیا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت جمع ہوگی؟ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا کا مقابلہ ہو۔ اور دیکھیے، ماں باپ سے محبت کرنا شریعت منع کرتی ہے، اپنی بیوی سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا شریعت منع کرتی ہے؟ نہیں منع کرتی۔ اور دعوت کھانا، اسے بھی شریعت نے منع کر دی، لیکن دعوت کی خاطر جماعت کی نمازیں چھوڑ دینا، या दावत में मूवी कैमरा हो, शरीयत नाराज है इससे, बस वहां ना जाए। मिस गैदरिंग हो, वहां ना जाए। बस यही चीज है मेरे दोस्तों, जहां अल्लाह ताला की मोहब्बत का और दुनिया की मोहब्बत का मुकाबला हो, वहां पर मुराद है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत को गालिब रखे। फिरता हूँ दिल में यार को मेहमा किए हुए, रुए जमी को कूचाए जाना किए हुए। जहाँ बैठ जाते हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंगे महफिल देख लेते, बस अल्लाह की मोहब्बत उस पर गालिब रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला की ये मोहब्बत मिले कैसे? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका सिखा दिया कि तुम अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। जिन्होंने मोहब्बत देनी है, ठीक है, अल्लाह ताला ही मोहब्बत का फरमाते हैं, उन्हीं से मांग लो, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दीजिए। और उसका जब अल्लाह ताला किसी को, मेरे शेख फरमाते अपनी मोहब्बत देंगे तो पता है क्या करेंगे, आगे सरदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वहुब्बा मैं युहिब्बुका, उन लोगों की मोहब्बत दे दीजिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे शेख ने फरमाया उसका तरीका ये होगा, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को मोहब्बत देना चाहते हैं तो उसके दिल में उस जमाने के किसी वली की मोहब्बत डाल देते हैं, वो उसके पास आना जाना शुरू करता है, उसकी मोहब्बत पैदा होती है और वही अल्लाह वाले की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत का जरिया बन जाती है। ये होता है वहुब्बा मैं युहिब्बुका, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करना ये शिर्क नहीं है। खुशकी जिसके दिमाग में चढ़ी हो, ये सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। अरे तू बीवी से भी तो मोहब्बत करता है, उसको शिर्क नहीं बोलता? अल्लाह वालों की मोहब्बत शिर्क है, अजीब बेवकूफियत है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जिन जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत हमें दे दीजिए, और यहाँ हम इसको खुशकी, दिमाग में खुशकी चढ़ी हुई है, बादाम का तेल लगाना चाहिए और खून फासिद भी निकलवाना चाहिए, पछने लगाने चाहिए इनको, क्योंकि पछने में क्या करते हैं, पहले सबके बाल उतारे जाते हैं, गंजा किया जाता है, उसी से दिमाग में ठंडक आ जाती है, फिर उसके बाद गंदा खून निकाला जाता है। ये पछने लगाने का तरीका है, जिसको हिजामा भी बोलते हैं। तो वो दिमाग की खुशी का इलाज कराए। वो क्या है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे वहुब्बा मैं युहिब्बुका, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत दे दीजिए। पता चला अल्लाह वालों की मोहब्बत, ये बड़े मजे की चीज है जनाब, क्योंकि वो मोहब्बत जब अल्लाह ताला की होती है उसका मजा ही कुछ और है। क्योंकि दुनिया की जो मोहब्बतें हैं, अजीब बात यह कि दुनिया की मोहब्बतें फानी है। वो कैसे, जिस कमाल की वजह से मोहब्बत करता है वो कमाल आरजी है। जैसे माल की वजह से मोहब्बत की जाती है, या हुस्न की वजह से मोहब्बत की जाती है, या कोई फन की वजह से मोहब्बत की जाती है, या खानदान की वजह से, तो ये सब आरजी चीज है। माल जाने वाला है, हुस्न खत्म होने वाला है। वही लड़की जब नानी दादी बनेगी, अब उसके मोबाइल में कोई बैलेंस तो डलवा के दिखाए मुझे, या ईद पर नए जोड़ा तो देकर दिखाए जरा, या उसको खड़ा होश की दावत दे, दूध पत्ती क्या पानी भी नहीं पिलाएगा सादा। जिसको शरबत रूहअफ़ज़ा पिला रहा है ना, उसको सादा पानी भी नहीं पिलाएगा। वो लौंडे को कहेगा मुहर्रम की सबील है, तेरे लिए दूध वाला बादाम वाला शरबत रखा है, चाचा आएंगे तो उसको सादा पानी पे टरखाएंगे। ये है, ये तमाशा होता है, ठीक है ना। तो वो जब दाढ़ी मूछ नहीं है, यार लोग आगे आगे पीछे घूम रहे हैं। अज हुस्न जो है वो बादशाह खल्क, शाह खल्क बना हुआ है, हर आदमी उसको मोबाइल भी दिलाया जा रहा है, नया नया मोबाइल, और मोबाइल में बैलेंस भी डलवाया जा रहा है, ठीक है। और इस पर जोड़ा, और चाचा जी को जरा कोई पूछे, तो ये फर्क है। तो पता चला कमाल उसका जो था, आरजी कमाल था, वो हुस्न था, वो चला गया, बस वो रुखसत हुआ, बस आशिक खान भी खसा खान हो गए। इसलिए मेरे शेख फरमाते हैं, जब मुलायम खां खशब खां हो गए, पहले आज से 2-3-4-5 साल पहले तक तब मताफ में ये होता था कि वो काले लोग जो है ना, वो उस पर उठाकर औरतों को या बूढ़ों को लेकर आते थे, बूढ़े जो मरीजों को, और उनका एक खास चक्कर होता है, उस चक्कर में जो आ जाए उसकी खैर नहीं होती। अब पिछले साल जब ये तमाशा नहीं था, वो अब खत्म हो गया, ये तमाशा मैंने देखा है। ऐसे लगते हैं खसम खसम खसम, ऐसा घुसते हैं कि बड़े बड़ों को इधर उधर उठा के पहन देते हैं। वो काले ऐसे आते थे हरम शरीफ में, वो मताफ में घुसते हैं, एक लाइन होती है उनकी खास, उस लाइन में कोई आ नहीं सकता, खशब 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 कहते हैं, घुसते हैं और हर आदमी इधर उधर। तो वो क्या खशब कहते हैं, लकड़ी को खशब कहते हैं, लकड़ी को। तो अब क्या शेर सुनिए, जब मुलायम खां खशब खां हो गए, यानी जिनका चेहरा फूल जैसा था, अब उस पर दाढ़ी निकल आई और मूछे बड़ी बड़ी निकल आई, और ये आलम हो गया, मूछों के जेरे साया लबे यार छुप गए, मूछों के जेरे छाया लबे यार छुप गए, और दाढ़ी के जेरे छाया वो रुखसार छुप गए, बालों की सफेदी में जुल्फे यार छुप गए, जो यार हुस्न के थे वो सब यार छुप गए। ये मेरे मुर्शिद का शेर है। क्या देखिए, हजरत ने उम्मत को समझाने के लिए कैसे प्यारे इशार फरमाए कि देखो जिन लड़कों के पीछे पागल बने हो, जब मूछे और दाढ़ी निकल आएगी अब तुम उनको थोड़ी कुछ पूछोगे, दूध पत्ती चाय जिनको गोद में बिठाकर पिलाने को तैयार है, और अनार का जूस पिला रहे हैं मोटा पाइप लगाकर। मोटा पाइप खास चीज है ना ये। और जिनको रंग बिरंगी टॉफियां और गुलाब जामुन और वो फालूदा पेश किया जा रहा है, वो कह ये चमचा खाने के लिए और ये चूसने के लिए पाइप, वो फालूदा लो ना तो दो चीजें मिलती है साथ में फालूदे के साथ, एक तो चमचा लंबा वाला मिलता है, लंबा सा चमचा होता है, साथ में मोटा पाइप भी लगा होता है, क्या इसे खाओ इसे चूसो, तो वो भी नहीं कोई पूछेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फानी चीज है ये, लेकिन वो पाक असमे पाक मिसल आमदा मौलाए मा फारूमी फरमाते, मेरा मौला मिसले से पाक है। एक माशूक को देखो उससे बढ़कर दूसरा माशूक नजर आएगा, एक हसीना से बढ़कर दूसरी हसीना नजर आएगी, लेकिन पाक मिसल आमदा मौलाए मा मेरे शेख फरमाते कि मारूमी फरमाते हैं कि देखो मेरा मौला मिसले से पाक है, अल्लाह ताला के जैसा हुस्न जमाल किसी का नहीं है, अल्लाह ताला का हुस्न जमाल लाजवाल है बेमिसाल है, तो ऐसा बाकमाल है, और इनके हुस्न को जवाल है, दस्त लग जाए सारा हुस्न रफ्ता हुस्न रफ्ता हो जाता है, वो हुस्न अगर दस्त लग जाए 13-12 मोशन आ जाए ना, फिर देखे कौन उनको देखकर जो है वो आंखें मारेगा फिर ऐसे करके, या मुस्कुराएगा या करके तो दिखाए, फिर सही कह रहा हूं ना, ये यार लोग ये भी काम तमाशा करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। देखो भाई बदगुमानी करना जायज नहीं है, ये भी बता दूं, ये वो तजुर्बात है जो मैंने देखे, ये तजुर्बात है जो मेरी आंखों ने देखे, अगर 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 मैं ये तजुर्बा होता तो मेरे सर पर खोपड़ी पर बाल ना होते, अगर ये मैं इस तजुर्बे से खुद गुजरा होता, जो खोपड़ी सलामत है ना, और मैं पेश करता इसको जूते खाकर पेश करता, फिर तो ये शेर पड़ता, अगर वो तजुर्बा गुजरता तो ये शेर पड़ता, हाँ भरे बाजार में वो जूते खाना याद है, हाँ भरे बाजार में वो जूते खाना याद है, हमको अब तक आशिकी का फिर ये कहता शेर में, इसे बदगुमानी नहीं करना भाई, बता रहा हूँ ये इसलिए बता दिया कि ये ना समझे कि जी मुल्ला को क्या पता, वो मुल्ला क्या जाने के इश्क की गली की बातें, तो मेरे शेख फरमाते हम खूब जानते हैं, समझा भी जाए तुम्हारी गली में ये सब कुछ होता है, जूते पड़ते हैं और मकाम खास पर जूते पड़ते हैं, मकाम खास पर और भरे बाजार में जूते पड़ते हैं, सब पता है कैसे तुम ड्रामे रचाते हो और किस तरह से, इसलिए बता दिया तुम्हारी गली की बातें, ये ना समझना बेखबर है, बाखबर है लेकिन किसी और के बाखबर है, उससे भी बाखबर है, लेकिन जो खबर जो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खबर दी है उस बात उस मौला पर फिदा है, इसलिए इस लैला की तरफ नहीं जाते। तो आप सल्लम ने क्या सिखाया, वहब्बा मैं हब्बुका और वला अमर अल्लदी जो बल्लेगुनी हब्बक, इसलिए लोग कहते हैं आमाल की क्या जरूरत है, आमाल की क्या जरूरत है, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों आमाल की जरूरत है। आप जरा वो माशूका अगर टेलीफोन ना करें या उसको गिफ्ट ना दे, वो आपको लिफ्ट देगी, नहीं मिलेगा ना, तो पता चला आमाल की भी जरूरत होती है, जिस तरह से एक लैला के लिए चक्कर भी लगाओ और ये भी करो वो भी करो और सब उसके लिए गिफ्ट भी भिजवाना जरूरी है और ये भी करना जरूरी है। अच्छा एक साहब ने कल परसों की बात है, जिस दिन एकम मुहर्रम थी उस दिन मुझसे सवाल किया कि आजकल एक नया काम चला है, वो ये कि जब मुहर्रम से साल नया शुरू होता है तो नया साल मुबारक हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो वो हमारे पीर भाई हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये इसका, मैंने कहा भाई हमने आज से 2-3 साल पहले तक इसका कोई वजूद नहीं था, आज से 2-3 साल पहले तक इस बात का कोई वजूद ही नहीं था, कोई इस साल पर नया साल शुरू होने पर कोई ये नहीं मुबारकबाद पेश करता था। तो मैंने कहा यह तरीका नेक लोगों का नहीं, अब ये ड्रामा शुरू हुआ है, कैसे 2-3 साल पहले कोई जानता भी नहीं था ये चीज, सिर्फ ज्यादा नहीं 2-3 बरस गुजरे, पिछले से पिछले साल से ये तमाशा शुरू हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर नया साल है हिजरी मुबारक हो खुश आमदेद और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और SMS भेजते हैं। तो मेरा ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अफसोस की बात यह है कि साल का नया दाखिल होना गोया के हमारी जिंदगी में कमी की अलामत है। क्या जिंदगी में कमी हो तो मुबारकबाद पेश की जाती है, रोया जाता है कि रोती है चश्म मेरी खराबी को देखकर, रोती है खल्क मेरी खराबी को देखकर, और रोता हूँ मैं कि हाय मेरी चश्म भी तर नहीं है। या हमारा ये आलम है कोई गुनाह करते करते हम कब्र की मंजिल की तरफ जा रहे हैं और मुबारकबाद पेश की जा रही है। ये तरीका बुजुर्गों का, नेक लोगों का तरीका नहीं है भाई, इसलिए इसकी मुबारकबाद देना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। न असलाफ से यह सिलसिला चला रहा है, न आज से 3 साल पहले तक इसका वजूद था कि कोई नए साल पर मुहर्रम पर कभी मुबारकबाद देता हूँ। आज तक ये इससे पहले वजूद नहीं था इसका। अब तो फायरिंगें भी होने लगी है इस बात पर, और पहले कोई जानता भी नहीं था। हम लोग यहाँ सभी बड़े हैं, समझते हैं 2-3 साल पहले तक इस चीज का वजूद था ना, ना कोई मुबारकबाद ना फायरिंगें होती थी। अब यार लोगों ने नया तमाशा लगाया तो लादा आमाल मोहब्बत मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले जैसे करते हैं वैसा करें। एक साहब ने मुझसे कहा कि मेरे पास गन है, अब फायरिंग का मौका नहीं मिलता। अब जब ये 14 अगस्त आती है या न्यू ईयर आता है या रबीउल अव्वल, रजा, बरा शबे बरात या रमजान शे का चांद, ईद का चांद वगैरह, इसमें फायरिंग होती है, तो मैं भी जरा उसमें गन साफ कर लेता हूँ। तो मुझसे उन्होंने पूछा ये तरीका कैसा है, मैंने कहा इसमें कबाहतें मौजूद है। कह रहे क्या कबाहत? मैंने कहा एक कबाहत तो ये है कि ये खिलाफ कानून है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, नंबर एक। अब रही बात कानून के खिलाफ सब करते रहे तो हम भी करें तो ये तो बात ठीक नहीं है ना भाई, नंबर एक। नंबर दो बात, दूसरी बात यह है कि फायरिंग करना ये नेक लोगों का नहीं फासिकों का काम है। नेक आदमी और शरीफ आदमी काम नहीं करता ये, जो चाहे दीनदार ना हो, खानदानी शराफत जिसके अंदर होती है वो भी ये काम पसंद नहीं करता। लेकिन दूसरी कवायद इसके अंदर ये है कि कोई शरीफ आदमी इसको अच्छा नहीं समझता, दो बात। तीसरी बात ये है इसमें ईजा है। ईजा क्या है? मरीज लोग परेशान हो जाते हैं। दादा रात 12 बजे, मेरी वालदा खुद बीमार है, बूढ़ी है वो, 70 से ज्यादा उनकी उम्र है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, 70 से ज्यादा उनकी उम्र है, लादा एक मरतबा फायरिंग हुई वो घबरा कर उठ गई, दिल की मरीज है वो। अब दिल के मरीज का क्या आलम होगा, अजियत हुई। बच्चों का भी यही हाल होता है, बच्चे भी एकदम उठ जाते हैं। खैर आजकल के बच्चे तो आदि भी हो गए हैं, अब तो तुझे फायरिंगों में ही पलते हैं वो। तो 3 कबाहत है। चौथी कबाहत ये कि इसमें इसराफ है, माल का जिया है, और माल को आग लगाना ये कौन सी हमाकत है, माल को जाया करना ये कौन सा तरीका है। तो इतनी सारी कबाहतें इसके अंदर मौजूद हैं, लिहाजा इसकी वजह से फायरिंग। बाकी कहने फिर हम क्या करें गम साफ करने का, मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत से जाकर पूछो कि जिस आदमी को गन साफ करनी हो, निशाना करना हो, उसका क्या तरीका है, उनसे जाकर पूछो, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो बुरी चीज हो उसको जाहिर करना। अब इसका सही तरीका क्या है ये हुकूमत के कवानीन से पूछो, हुकूमत के कवानीन है उसने बनाया, या तो तुम बंदूक ना लेते, तुमको क्या शौक आया था। अच्छा एक साहब अभी 10-15 दिन, 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है, एक साहब मिले लंगड़ाते हुए आए, मैंने खैरियत क्या हुआ, फिर मैंने पूछा भाई आप इतने दिन से कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि असल में वो जरा चोट लग गई थी पाँव में। खरीद कैसे हुआ? अच्छा मुझे बेतकल्लुफ ही हंसने लगे। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे वो पाँव में गोली लग गई थी। खरीद क्या हुआ? हमारे भाई की शादी थी तो उसमें हमने फायरिंग की थी तो गोली लगी, तो उन्होंने दिखाया, फिर उन्होंने दिखाया कि गोली यहाँ से दाखिल हुई और यहाँ हड्डी से पार हो गई। कहा मैं 4 महीने से बिस्तर पर हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा सवाब का काम था, यही तो चीज है कि मना किया। अब शादियों में फायरिंग करते हैं, पेट्रोल पंप का इफ्तिताह हुआ, इतनी फायरिंग कि मैं एक जगह बयान के लिए गया हुआ था, घर से फोन आया कि यहाँ तो हंगामे हालात खराब हो गए हैं, इतनी फायरिंग हो रही है। अच्छा मैं परेशान, खैर मैंने एक दो दोस्तों को फोन किया, भाई क्या हो रहा है, हालात क्या है, हालात ठीक है पता करो, तो पता चला जी एक पेट्रोल पंप है उसका इफ्तिताह हुआ है। जिसकी बुनियाद ऐसे पड़ेगी मेरे दोस्तों क्या आलम है, सब डर रहे हैं, सब आलम ही हो रहा है, तो ये चीज अच्छा काम नहीं है। वो फायरिंग शादी हुई, पांव जख्मी हो गया, क्या खुशी बची, ऐसे लोगों की जान भी चली जाती है, क्यों? क्योंकि गोली फंस जाती है, क्या कहते हैं ठक 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 करके चलाए, पता चला किसी को गोली लगी, बार जगह तो धूला तक को गोली लग गई, ایسے بھی واقعات ہوئے. تو آپ بتاؤ کیا خوشی کا دادا, اس لیے شریعت نے ہر چیز کا رکھا ہے, اسی لیے ہر چیز کا قاعدہ ہے. کرنا شوق ہے, شوق ہے فائرنگ کرنا, بندوق رکھنا, یہ تو ایک اچھی چیز ہے. حکومت بھی اس کی اجازت دیتی ہے, قانون اس کو منع تھوڑی کرتا ہے, لیکن قانون کے دائرے میں رکھے اور قانون کے دائرے میں کام کرے. قانون تھوڑی سے منع کرتا ہے, ہمارا ملک پاکستان کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بندوق رکھنا چاہے بالکل رکھ سکتا ہے, وہ اس کا طریقہ لائسنس بن رہا ہے, بندوق رکھے اور قانون معلوم کرے کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس سے تھوڑی کوئی منع کرتا ہے, یہ تو زینت کی چیز ہے, اچھی چیز ہے, لیکن اچھی چیز کا غلط استعمال یہ اچھا نہیں ہے. اچھی چیز کا غلط استعمال یہ اچھا نہیں ہے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے اپنی مردانہ قوت کو ضائع کر دوں. آپ نے ناپسند فرمایا, فرمایا تھا یہ پسند نہیں ہے. ہاں اس کو توڑنے کا طریقہ ہے تو اس کو توڑو, لیکن تم اپنی مردانہ قوت کو ضائع مت کرو, یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو, اسی طرح سے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعمال یہ بھی ضروری ہیں, لیکن وہ اعمال کیسے, اب یہ کام ہے اللہ والوں سے سیکھے. دادا میرے شیخ نے فرمایا اللہ والوں کی محبت کو بیچ میں اس لیے رکھا کہ جن کو اللہ والوں کی محبت مل جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے گی اور اعمال محبت کی محبت بھی مل جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.